मित्रों नमस्कार। अब हम फिर आरंभ करते हैं अपना कार्यक्रम पठामी संस्कृतम। आज हम एक नई बात सीखेंगे, वो ये है कि संस्कृत में छंदों का विशेष महत्व है। जितने संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए उसमें हम प्रायः देखते हैं कि ग्रंथ के रचनाकार ने किसी न किसी छंद का प्रयोग किया है। इसलिए इन रचनाओं में एक लय है, मधुरता है, गेयता है, और इन्हें याद रखने के लिए भी सबसे सुंदर उपाय यही था कि इन्हें गा करके याद रखा जाए। इसीलिए हमारे यहाँ सामवेद गान की तो बहुत ही पुरातन परंपरा है, पर अन्य वेद भी गाकर पढ़े जाते हैं और प्रायः सभी ग्रंथ गा करके पढ़े जाते हैं। इन छंदों में विविधता हो, विभिन्नता हो, इस विचार से कई कवियों ने अलग अलग छंदों की रचना की, अलग अलग छंदों की कल्पना की, और ये सारे छंद हमारे संस्कृत ग्रंथों में प्रयुक्त होते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ छंदों का परिचय प्राप्त करेंगे उनके श्लोकों के माध्यम से, तो आओ सुनते हैं। मित्रों, जब हम संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से छंदों को पढ़ने वाले हैं तो एक बात बताना चाहूंगी कि मेरे पिता ने घर में नियम बनाया था, संध्या के समय हम सभी बच्चे उनके साथ बैठ करके प्रार्थना किया करते थे, और उस प्रार्थना में भगवद गीता के साथ साथ उन्होंने कुछ 25 श्लोक इस तरह से चुन करके लिए थे जिनके माध्यम से अलग अलग छंदों का परिचय हो। हालांकि ये बात तब समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज जब विचार करती हूँ तो देखती हूँ कि उन्होंने किस प्रकार इन श्लोकों का चयन किया था ताकि हमें छंदों की विविधता का परिचय हो सके। तो आरंभ करते हैं उन्हीं श्लोकों में से, और जिस क्रम से हम वो श्लोक पढ़ते थे उसी क्रम से मैं प्रयास कर रही हूँ। सबसे पहला श्लोक जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं ये है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव प्रद्युम्न दामोदर विश्वरूप मुकुंद विष्णु भगवन नमस्ते। ये श्लोक हमने पहले पढ़ा था ये समझने के लिए कि इस श्लोक में सारे के सारे संबोधन लगाए गए हैं और श्री कृष्ण को संबोधित करके ही ये पूरा श्लोक है जिसमें उनके विविध नामों की चर्चा है और उनके नामों से ही उनको संबोधित किया गया है, जैसे श्री कृष्ण है, गोविंद है, ये सारी की सारी संबोधन की विभक्तियां हैं। आज हम इसका छंद भी देख लेते हैं। इस छंद का नाम है इंद्र वज्रा, और इसको जब मैंने सुर से पढ़ा तो तुम्हें समझ में आया कि इसकी अपनी एक लय है, तो इस लय को इंद्र वज्रा लय कहते हैं। अब इन लयों की, इन छंदों की एक अपनी गणित भी होती है, उसकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे। आज केवल नाम याद रखते हैं कि यह जो श्लोक है यह श्लोक इंद्र वज्रा छंद में लिखा गया है। अगला श्लोक था, कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। तो ये भी कृष्ण के प्रति ही यह श्लोक है कि हे कृष्ण, तुम्हारे जो दोनों चरण कमल हैं इनका मुझे सदा ही ध्यान रहे, क्योंकि अगर मैं सोचूं कि मैं इनका ध्यान अभी नहीं करती हूँ, बाद में कभी कर लूंगी, तो जब मृत्यु का समय आएगा और जिस समय मैं दूसरी तरह से अपने शरीर की अक्षमताओं से बाधित होंगी, उस समय कब ध्यान आएगा तुम्हारा स्मरण करने का। इसलिए आज से ही नित्य प्रति तुम्हारे इन चरण युगलों का ध्यान मेरे मन में बसा रहे, तो अंतिम समय मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत सुंदर श्लोक है, और ये जो छंद है इस छंद का नाम है वसंत तिलका। दूसरा भी एक श्लोक मुझे इसी छंद में याद आता है जो राम रक्षा स्तोत्र में से है, जिसमें कहा गया है, आत्मसज्ज धनुषा विषस्पृशा वक्षया शुगनिशंग संगिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणो अग्रतः पथि सदैव गच्छताम। तो देखा कि ये दोनों श्लोकों की रचना या ताल और लय एक ही है। अब अगला श्लोक जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। ये श्लोक भी हम पहले पढ़ चुके हैं और ये सरस्वती के लिए है। उनका वर्णन किया गया है कि जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि सब देवता नमन करते हैं, हाथ में वीणा और पुस्तक लिए हुए हैं इत्यादि। लेकिन आज हम छंदों की बात कर रहे हैं, तो इस श्लोक का छंद है शार्दूल विक्रीडित। बहुत सुंदर नाम है। शार्दूल का अर्थ होता है सिंह, तो शार्दूल विक्रीडित इसका नाम क्यों पड़ा ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हमारे संस्कृत भाषा के जो सारे सुंदर सुंदर छंद हैं उनमें से यह भी एक है। अब अगला श्लोक देखते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। तो देखा दोनों श्लोकों का छंद एक ही है, शार्दूल विक्रीडित। और ये दूसरा श्लोक जो है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुराः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। ये विष्णु का श्लोक है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। और अब विष्णु का ही एक दूसरा श्लोक है जो अलग छंद में है। इस छंद का नाम है शिखरिणी। और ये श्लोक है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। अब मित्रों, अगला जो हम छंद देखेंगे इसका नाम है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप का अर्थ होता है सरल, अति सरल। तो ये अनुष्टुप छंद भी अत्यंत सरल है और हम देखते हैं कि हमारे ग्रंथों में से अधिकतर ग्रंथ रचना अनुष्टुप छंद में ही की गई है। और पूरी की पूरी भगवद गीता भी अनुष्टुप छंद में ही है। अनुष्टुप छंद का सबसे अच्छा उदाहरण अगर देना हो तो हम भगवद गीता के पहले ही श्लोक से आरंभ कर सकते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। है ना? तो मित्रों, छंदों से हमारे परिचय का सिलसिला अब हम आरंभ करेंगे अगली दो तीन कड़ियों में भी, लेकिन आज का हमारा समय समाप्त हो रहा है। तो आप लीना महेंदले को अनुमति दीजिए, अगली बार हम कुछ और छंदों को लेकर के आएंगे और फिर छंदों की रचना के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।